أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. آموزش فلسفہ کے 7 نمبر درس میں ہماری بحث چل رہی تھی. ہماری بحث یہاں پر آ کر رکی تھی کہ فلسفی مسائل کی ماہیت اور حقیقت کیا ہے. اس میں یہ بیان کیا تھا کہ فلسفی مسائل کلی اور عام ہوتے ہیں. اتنے کلی اور عام ہوتے ہیں کہ اس کے مسائل مبادی تصدیقی بنتے ہیں باقی علوم کے لیے. یعنی تمام علوم جو ہیں وہ اس کی طرف محتاج ہوتے ہیں. اس مطلب کو سمجھانے کے لیے جناب آیت اللہ مصباح نے بہت ساری مثالوں کا سہارا لیا تھا. چونکہ پچھلے درس میں ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا تھا, اب اس کا تکرار یہاں پر نہیں کرتے. آج جو ہے وہ مبادی فلسفہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے درس میں موضوع فلسفہ کے اوپر گفتگو کی تھی اور مبادی علوم کے اوپر گفتگو کی تھی. مثلا فارسی کتاب کے مطابق صفحہ نمبر 87 پر یہ بحث ہوئی تھی کہ مبادی علوم و رابطہ آنہا با موضوعات و مسائل, اس عنوان سے بحث ہوئی تھی. اور وہاں پر ہم نے مبادی کا تعارف کروایا تھا, اس کی تعریف کی تھی کہ مبادی سے کیا مراد ہے. اور وہاں پر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ مبادی جو ہیں وہ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جن کا جاننا علم کے شروع کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے. یعنی ایسے مطالب ہوتے ہیں, مسائل کی جگہ اگر مطالب کہیں تو زیادہ دقیق ہے. اور پھر ہم نے مبادی کو جو ہے وہ تقسیم کیا تھا مبادی تصوری میں اور مبادی تصدیقی میں. مبادی تصوری سے ہماری مراد وہ مطالب تھے کہ جن میں ہم اس علم کے موضوع کو بیان کرتے ہیں کہ اس علم کے موضوع کا معنی کیا ہے, اس علم کے موضوع جو ہے اس سے مراد کیا ہے. یعنی موضوع علم کے جو تفصیلات ہیں تصوری طور پر, مفہومی طور پر, تعریف کے طور پر, اس کو کہتے ہیں مبادی تصوری. اب وہ موضوع چاہے علم کا موضوع ہو یا مسائل کے موضوعات ہوں, دونوں موضوعات کی گفتگو مفہومی طور پر مبادی تصوری کہلاتی ہے. موضوع علم سے مراد مثلا جیسے ہم نے مثال دی تھی کہ علم کا موضوع نحو کا موضوع قرار دیا تھا الکلمتو, درست ہے, الکلمتو والکلام مثلا. اور پھر اگر الکلمہ سے کیا مراد ہے اس کو وضاحت کرنے کی ضرورت ہو تو وہ مطالب کے جو وضاحت میں آپ لے کر آ رہے ہیں اس کو مبادی تصوری کہتے ہیں. اور اگر آپ مسائل میں جا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں فاعل مرفوع ہوتا ہے, مفعول منصوب ہوتا ہے, تمیز حال مثلا, یہ چیزیں ساری آتی ہیں, اب ان موضوعات کو بھی تعریف کرنے کی ضرورت ہے. فاعل کسے کہتے ہیں, مفعول کسے کہتے ہیں, تمیز کسے کہتے ہیں, حال کسے کہتے ہیں. तो मसाइल के मौजूआत की वजाहत भी मबादी तसव्वुरिया में आती है। दुरुस्त है। बस मबादी तसव्वुरी में मौजू को खोला जाता है मफहूमी एतबार से, चाहे वो इल्म का मौजू हो चाहे वो उसी इल्म के मसाइल के मौजूआत हो। क्लियर होगी मतलब। और ये बात हमने फिर बयान की थी कि मबादी तसव्वुरी मामूलन उसी इल्म के अंदर बयान किए जाते हैं, अलग इल्म बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मफाहीम को खोलना है मौजूआत के जो मफाहीम हैं और वो अलग इल्म की जरूरत नहीं है, उसी इल्म में खोल दिया जाता है। मसलन आप अगर फिजिक्स का मसला बयान करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मौजू ए फिजिक्स जो है वो मादा व मैटर है, तो उसी के अंदर जो है वो मुकदमे के तौर पर पहले मैटर की वजाहत कर दी जाती है कि मादा किसे कहते हैं, या इसके बाद एनर्जी की ताबीर इस्तेमाल करते हैं तो एनर्जी किसे कहते हैं, ठीक है, इस तरह के मसाइल। दूसरी जो मबादी की किस्म थी वो थी मबादी तस्दीकिया। मबादी तस्दीकिया ये दो किस्म के मतालिब पर मुश्तमिल है। अगर मौजू के वजूद की तस्दीक व इस्बात करना हो तो ये मौजू का इस्बात मबादी तस्दीकी कहलाता है उस इल्म के लिए कि जिसका ये मौजू है। मसलन अगर मसलन आप यही फिजिक्स का अगर आप मौजू लेते हैं और फिजिक्स का मौजू मिसाल के तौर पे मादा है, अब मादा मौजू है फिजिक्स का, इस मादे के वजूद को इस बात होना जरूरी है कि मादा नाम की कोई हकीकत इस कायनात में मौजूद है, तब जाकर फिजिक्स उसके अहकाम के बारे में बहस करेगी। अब जो इल्म मादे के वजूद को इस वो मतालेब के जिनके जरिए आप मादे के वजूद को इस बात करेंगे वो मबादिये तस्दीकी कहलाएंगे। बस मबादिये तस्दीकिया की एक किस्म जो है वो मौजू के वजूद का इस्बात है कि आपने जिस इल्म में वारिद होना है उस इल्म के वजूद का इस्बात जरूरी है, वो इस्बात जब आप करेंगे वो मबादी तस्दीकिया कहलाएगा। और दूसरी किस्म जो मबादी तस्दीकिया की थी वो उसूल और कवानीन थे या हैं कि जिनके जरिए आप इल्म के मसाइल को तबयीन करते हैं और इस बात करते हैं। मसलन अगर आप फिजिक्स के अंदर मुख्तलिफ मसाइल को बयान करना चाहते हैं जो मादे से रिलेटेड हैं, जो एनर्जी के साथ रिलेटेड हैं, उनको आप बयान करना चाहते हैं, तो आप जिन कवानीन और उसूलों के मातहत उन मसाइल को हल करेंगे उन कवानीन को भी तो कहीं इस बात करना है ना। मसलन उनमें से एक कायदा यह बयान किया था कि फिजिक्स कानून इल्लियत के जरिए आकर क्या करती है, इस कायनात में मौजूद राजों को कशफ करती है। क्योंकि मसलन आग अगर जलाती है दुरुस्त, या मसलन अगर कोई बीमारी आ जाती है तो इंसान हतमन पीछे जाता है कि ये बीमारी कैसे वजूद में आई है, मैं इसको जानूं। मेडिकल के अंदर मसलन मिसाल ले लें तो अब ये इस पीछे जाना, मतलब जैसे अभी एक देख रहे कोरोना वायरस आया, अब वो मुख्तलिफ बीमारियां लेकर आ रहा है, अब इंसान इस बात के पीछे चला जाता है कि ये जो बीमारियां और अलामात आ रही हैं इसकी क्या वजूहात हैं। तो जाहिर सी बात है आप कानून इल्लियत को मानते हैं तो वजूहात के पीछे जाते हैं। अगर आप कानून इल्लियत के मुनकर हो, इल्लत व मालूल के नजरिए को ना मानते हो, तो फिर वजूहात ढूंढने का कोई फलसफा बाकी ही नहीं रहता। बस इसका मतलब है कि जितने भी उलूम हैं वो अपने मसाइल को इस बात करते हैं कानून इल्लियत का सहारा लेकर, दुरुस्त है? और कानून इल्लियत जो है वो उस इल्म में तो बहस होता ही नहीं है, ना फिजिक्स उसके बारे में बहस करती है, ना केमिस्ट्री उसके बारे में बहस करती है, ना कोई और इल्म उसके बारे में बहस करता है कि कानून इल्लियत क्या है, इसकी हुदूद क्या है, इसकी माहियत क्या है, ये सारी बहसें जो हैं। तो अब कानून इल्लियत, इल्लियत के जो मतालिब हैं ये क्या है? मबादी तस्दीकिया कहलाएंगे। किसके लिए? उलूम के लिए। पस मबादी तस्दीकिया दो किस्म के हैं, एक उस इल्म के वजूद का इस्बात मबदा तस्दीकी कहलाता है, और उस इल्म के मसाइल की वजाहत और इस बात के लिए जिन कवानीन का सहारा, उसूल का सहारा लिया जाता है, उनके बारे में बहस मबादी तस्दीकिया कहलाती है। बात वाजे हुई? मैंने तकरार कर दिया पिछले मतालिब को ताकि इस मतलब को समझना आसान हो जाए। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि फलसफे के मबादी जो हैं उनकी क्या सूरत हाल है, मखसूसन मबादी तस्दीकिया। चूंकि हमने मबादी तसव्वुरिया में तो ये कहा था कि अलग इल्म होने की जरूरत नहीं है, और मबादी तसव्वुरिया फलसफे के होते हैं। क्यों? जब भी आप कोई मसाला पेश करेंगे उसके मौजू को खोलने की जरूरत है। मसा आप कहते हैं कि फलसफे का मौजू मौजूद मुतलक है। मौजूद मुतलक क्या है, इससे मुराद क्या ली जा रही है? अब आपने मौजूद मुतलक की जो वजाहत करनी है ये मबादी तसव्वुरिया है। क्यों? क्योंकि आप मौजूद मुतलक के मफहूम को वाज़े कर रहे हैं कि मौजूद मुतलक से क्या मुराद है। या मसलन आप इल्लत और मालूल की ताबीर इस्तेमाल करते हैं। मसलन आप कहते हैं अल इल्लत तो उसका ये हुक्म है, अल मालूल उसका ये हुक्म है। तो अब इल्लत क्या है, मालूल क्या है, इसको खोलने की जरूरत जब पड़ती है, इसकी तारीफ की जरूरत जब पड़ती है, ये क्या है? मबादी तसव्वुरी है। तो उसी इल्म में वजाहत कर, जब आप बाबुल इल्या इसकी बात को शुरू करते हैं सबसे पहले बात यह की जाती है कि तारीफुल इल्ला, इल्लत की तारीफ क्या है। आप इल्लत की तारीफ बयान करते हैं तो वो मबादी तसव्वुरी कहलाता है। तो मबादी तसव्वुरी में तो इतना मसला नहीं है कि मुश्किल नहीं है, अगरचे फलसफे का मौजू जो है वो बदी ही है और तारीफ से बेनियाज है। बस हमने क्या कहा था कि फलसफे का मौजू मौजूद मुतलक तो ले रहे हैं, लेकिन उसमें मुराद क्या होती है? हमारी वजूद, कि हम वजूद के बारे में बहस कर रहे होते हैं। तो वजूद एक ऐसा मफहूम है कि जिससे ताजा मुतवल्लिद बच्चा भी आशना है। क्यों? उसकी क्या इल्लत है? उसकी आपने अलामात देखनी है। तो क्या है? मसलन बच्चा, बच्चे को जब भूख लगती है तो गिड़गिड़ाता है, जुस्तजू करता है, तो इसका मतलब है कि उसको ये ईमान है कि मेरी भूख मिटने वाली कोई चीज़ है और मुझे पिलाई जाए। तो ये तसव्वुर है, उसके जहन के अंदर होने का तसव्वुर है उसमें। तो वजूद का मफहूम इतना बदीही है, तो लिहाजा इस एतबार से अगर हम देखें तो फलसफे को मबदाए तसव्वुरी की जरूरत नहीं है, खुद फलसफे का जो मौजू है। लेकिन जो ताबीर इस्तेमाल की जाती है, मुमकिन है हम कहें कि इस ताबीर को खोलने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम कहते हैं वजूद मुतलक, तो यहां मुमकिन है जरूरत पेश आ जाए। लेकिन जो मौजूआत के मसाइल के मौजूआत हैं उनको खोलने की जरूरत है कि उसी मसले में उसकी बहस होती है। अब आते हैं कि मबादी तस्दीकी, जो कि मामूलन दूसरे उलूम में जिसकी बहस होती है, मबादी तस्दीकिया दूसरे उलूम में बहस की जाती है, उसमें मसलन फिजिक्स के लिए क्या है कायदा इल्लियत, मबदा तस्दीकी है वो, फिजिक्स में बहस नहीं होती है बल्कि फलसफा उसके बारे में बहस करता है। तो फलसफा आया मबादी तस्दीकिया, इसके हैं, अगर हैं तो फिर आया फलसफे से ऊपर भी फिर कोई इल्म होना चाहिए कि जो उसके बारे में बहस करे आया है या नहीं है। तो जवाब उसका यह है कि पहली बात तो यह है, आयतुल्ला मिसबाह बयान फरमाते हैं, जिसको मैंने अभी बयान भी किया है, कि फलसफे का जो मौजू है वो बदही है, उसको तो किसी इस बात की जरूरत है ही नहीं। असल वजूद का इस बात बदही है। पर हमने मबादी तस्दीकिया की दो किस्में की थी ना, एक मबदाए तस्दीकी क्या है कि उस इल्म के मौजू का इस बात करना, और दूसरा था उन उसूल और कवानीन का बयान करना कि जिनके जरिए उस इल्म के मसाइल को हल करना है। अभी हम आते हैं कि मौजू ए फलसफे को इस बात की जरूरत है या नहीं। जवाब उसका यह है कि इस बात की जरूरत नहीं है, वो इतना बदीही है कि इसको इस बात की जरूरत ही नहीं है। मसलन इबारत देखें आयतुल्लाह मिसबाह की सफा 99 के ऊपर आखिरी बिल्कुल लाइन फरमाते हैं कि अम्मा वजूदे मौजू ए फलसफा एहतियाज भी इस बात ना दारद, इस बात क्या असलन मोहताज ही नहीं है, जीरा असल हस्ती बदीहीस्त, चूंकि असल हस्ती असल वजूद ये बदीही है, व बराए हीच आकली काबिले इनकार नीस्त, और कोई भी आकिल इंसान इसका इनकार नहीं कर सकता। यानी कौन है कि जो आकर कहेगा कि वजूद नाम की जो चीज है ही नहीं है, क्योंकि अगर वजूद नाम की कोई चीज ना हो तो फिर आप भी नहीं है। तो अगर तुम अपने होने को दर कर रहे हो तो इसका मतलब है कि वजूद है, ठीक है, कोई इनकार नहीं कर सकता इसका। वह दस्ते कम हर कसी बे वजूद खुदिश आगा हस वह हमीन कदर काफी अस के बेदानत के मफहूम वजूद मिस्दाक इदारत, के कहते हैं कि जो इंसान अपने होने को दर कर रहा है वो इंसान बदीही तौर पर इस बात को जानता है कि वजूद का मफहूम वजूद का मिस्दाक है और वो मैं हूं, उसको इस बात की जरूरत नहीं है। बस फरमाते हैं कि मबदाए तस्दीकी जो एक था वो जो वजूद मौजू के साथ मरबूत था उसकी तो जरूरत नहीं है, बस अलग इल्म की जरूरत नहीं है कि कोई आकर वजूद के इस बात को लेकर आए, वजूद को साबित करे, इस बात करे उसका, फिर फलसफे का मकाम बने, फिर फलसफा आके वजूद के अहकाम बयान करे, कहते ऐसा तो है ही नहीं है, बस इस मबदाए तस्दीकी की जरूरत नहीं है। फरमाते अम्मा किस्म दुवम अज मबादी तस्दीकी, जो दूसरी किस्म थी मबादी तस्दीकी की, यानी क्या मुराद, उसूली के मबना ये इस बात मसाइल करार में गिरंद, यानी वो दूसरी जो किस्म थी वो क्या थे, वो उसूल थे या वो उसूल हैं कि जो मसाइल के इस बात के लिए मबना करार पाते हैं, यानी इसकी बुनियाद पर उन मसाइल को साबित किया जाता है, जैसा कि मिसाल दी कायदा इल्लियत की। फरमाते हैं कि ये मबदा तस्दीकी जो है ये वाला, ये खुद फिर क्या है, बेदो दस्ते तकसीम मिशाबाद, इसकी फिर आगे दो किस्में हैं। बाज मबादी तस्दीकिया हैं कि जो नजरी हैं और बाज ऐसे उसूल हैं और मबादी तस्दीकी हैं कि जो बदी ही हैं। उसूल नजरी फरमाते हैं कि इनको इस बात की जरूरत होती है, चूंकि नजरी है, बदी और नजरी का मिलाक हम पढ़ेंगे बाद में जाकर, मार्फत शनासी में इसके बारे में तफसील से बात आएगी। मुख्तसर तौर पे पहले भी अर्ज किया था, अभी भी अर्ज किए देता हूं कि नजरी यानी जिसको इस बात करने की जरूरत पेश आ जाए, आपके लिए वाजे और रोशन नहीं है, आप कहते हैं मेरे लिए साबित करो इसको, उसको नजरी कहते हैं, और बदही क्या है, वाजे और रोशन है, उसको इस बात की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर बुरहान और दलील लाने की जरूरत नहीं है, उसको कहते हैं बदही। तो फरमाते हैं कि बाज उसूल के जो मबादी तस्दीकिया हैं वो नजरी हैं, यानी उनको इस बात की जरूरत है। तो जब इनको इस बात की जरूरत है तो जाहिर सी बात है कि इनको फिर दूसरे उलूम में बहस करने की जरूरत है, क्योंकि मबादी तस्दीकिया मामूलन क्या होते हैं, दूसरे इल्म में बहस की जाती है। और वो उसूल नजरी कि जो मबदाए तस्दीकी करार पाते हैं उनको इस्तेलाही जबान में उसूले मौजूआ कहते हैं। मरवाजे की इस्तेला याद रखें, बहुत ज्यादा उलूम के अंदर इस्तेमाल होती है कि उसूले मौजूआ। मसलन कहते हैं हम इसको असले मौजूई के उनवान से कबूल करते हैं। आपको कहा जाए इस जुमले का तर्जमा करें, जो इसे इस्तेलाह से आगाह नहीं होगा वो कहेगा कि हम इसको घड़ी हुई असल के मुताबिक कबूल करते हैं। खूब किया एक बंदे ने इश्तबा। आयतुल्ला मिसबाह हाफ़िज़हुल्लाह की किताब का तर्जमा कर रहा है, और आयतुल्ला मिसबाह वहां पर कहते हैं कि हम इस मतलब को उसूल मौजूआ के उनवान से कबूल करते हैं, और वो उसूल मौजूआ का तर्जमा करता है घड़ी हुई असल, क्योंकि मौजूआ का मतलब वज़ अशुदा और घड़ा हुआ होना होता है लुगत के अंदर, तो ये उस माना में ले आते हैं। लेकिन मंतिक की इस्तेलाह में, फलसफे की इस्तेलाह में उसूल मौजूआ से मुराद वो उसूल हैं कि जो नजरी हैं और दूसरा इल्म उसके बारे में बहस करता है। मैं अपने इल्म में कहता हूं कि मैं इसको मुसल्लम फर्ज कर रहा हूं कि ये साबित हो चुके हैं दूसरे इल्म में, मेरी सरोकार नहीं है इसके साथ। मसलन फिजिक्स कायदाए इल्लियत को असल मौजूई के उनवान से कबूल करके अपने मसले को आगे चलाती है। अब कानून इल्लियत को साबित करना किसका काम है, फलसफे का काम है, दुरुस्त है। अब फिजिक्स के कोई आकर पूछे कि तुम कानून इल्लियत का सहारा क्यों ले रही हो, पहले इसको साबित करो, वो कहेगी कि मेरा वजीफा नहीं है, ये वजीफा फलसफे का, और मैंने फलसफे से ये कबूल करके फिर अपने मसाइल को हल कर रही, मैंने असले मौजूई के उनवान से कबूल कर लिया है इसको, असले मौजूई के उनवान से कबूल कर लिया। क्या मुराद, यानी फलसफे में इसको साबित किया गया है और मैं उस पर ईमान रखता हूं, फलसफे ने साबित कर दिया, उसके दलाइल ठीक हैं, उसके बुरहान जो है वो मुहकम है, और मैं उस पर ईमान ले आया हूं। अब उस कायदे के तहत मैं अपने इल्म में क्या हूं, उससे इस्तफादा करना हूं, और अपने इल्म में उसको असले मौजूई के उनवान से कबूल करता हूं, और उसके मुताबिक उसके मसाइल बाकी जो है वो हल कर रहा हूं। तो फरमाते हैं कि चुनान के कबलन इशारे शो, जैसा कि पहले बयान किया है, क्या कुल्ली तरीन उसूले मौजू ए दर फलसफे उला इस बात में गर्दत। ये पहले हम बात कर चुके हैं जब हमने मबादी की बात की थी कि कुल्ली तरीन जो मबादी तस्दीकी होते हैं और ये उसूले मौजूआ जो होते हैं ये फलसफे में बहस होती है, यानी फारे अज मसाइल फलसफा उसूले मौजूआए साइर उलूम रा इस बात में कुनंद। मिसाल देते हैं, यानी बाज फलसफे के मसाइल क्या करते हैं, बाकी जो उलूम हैं उनके उसूले मौजूआ को क्या करते हैं, साबित करते हैं, यानी उनको उस कायदे की जरूरत है और फलसफा उस कायदे को साबित कर देता है, और वो उस कायदे को लेकर अपने मसाइल को हल कर लेते हैं। खुद फलसफे को उसूले मौजूआ की जरूरत है या नहीं है, चले हम चुके साथ साथ चल रहे हैं ना, अब ये उसूल मौजूआ वाज़े हो गया कि एक मबदा तस्दीकी जो है वो क्या है, उसूल मौजूआ के उनवान से होता है। उसूल मौजूआ फलसफे के लिए है या नहीं है? कहते हैं खुद फलसफा उला असासन न्याजी बे चुनीन उसूल मौजूआ नादारत, लेकिन खुद फलसफा जो है वह उसूल मौजूआ का मोहताज नहीं है। यानी वो ऐसे उसूलों का मोहताज नहीं है कि जो नजरी हैं और उनको इस बात होने की जरूरत हो और वो दूसरे इल्म में जाकर इस बात हो और फिर फलसफा उससे इस्तेफादा करे, ऐसा नहीं है। हर चंद मुमकिन असदर दीगर उलू में फलसफी मानंद खुदाशनासी व रवानशनासी फलसफी व फलसफा अखलाक अज उसूली इस्तेफाद शवद के दर फलसफा नुखुस्तीन या दीगर उलू में फलसफी या हत्ता दर उलू में तजर्बी साबित शुदे बाशत। इस इबारत को मैं थोड़ा खोल दूं ताकि जो इबारत को पढ़ना चाहते हैं साथ साथ उनके लिए मतलब जो है वो वाजे हो जाए। वो जो हमने इस्तिलाहात की वजाहत की थी ना, वो अपने जेन में लेकर चलते रहे। हमने फलसफा की चार इस्तिलाहात बयान की थी। एक इस्तिलाह कदीम थी कि जिसमें फलसफा मुख्तलिफ उलूम का मजमुआ था, उसको हम कहते थे उलूम फलसफी, और उनमें से एक फलसफा जो था वो क्या था, फलसफा उला। दुरुस्त है? फलसफा उला का हमने मौजू बयान किया मौजूद मुतलक और कहा कि इसके मसाइल कुल्ली तरीन मसाइल होते हैं और तमाम उलूम इस फलसफा उला का मोहताज हैं अपने मौजू के इस बात के लिए, उसूल मौजूआ के इस बात के लिए मबादी तस्दीकिया के अंदर। तो कहते हैं फलसफा उला न फलसफा, फलसफे की इस्तिलाहों को मद्देनजर रखते हुए फलसफा उला न कि फलसफा बेमाने आम कि जो मुख्तलिफ उलूम का मजमूआ है, फलसफा उला ऐसे उसूलों का मोहताज नहीं है कि जो नजरी हैं, यानी उसूल फलसफा उला में ऐसे उसूल नहीं इस्तेमाल किए जाते जो नजरी हो और उनको इस बात की जरूरत हो और वो दूसरे इल्म में बहस होती हो उसके बारे में। हां मुमकिन है कि उलूम फलसफी मुख्तलिफ मतालिब को अपने मसाइल हल करने के लिए दूसरे इल्म से ले लें बेउनवान असल मौजूई। मतलब खुदाशनासी की बहस अगर आपने करनी है तो खुदाशनासी की बहस में तो खुदा के मतालिब, खुदा के बारे में मारिफत जो है वो बयान करनी होती है। खुदा का वजूद किसने इस बात करना है? फलसफे ने, फलसफा उला ने। चूंकि मैंने पहले अपने मतलब बयान कर दिया है कि जब वजूद की तकसीम जो है ये फलसफा साबित करता है कि वजूद मुनहसिर नहीं है मादे के अंदर, बल्कि वजूद दो किस्म का, यह मादी है या मुजर्रद। यह वजूद मुनहसिर नहीं है मुमकिन उल वजूद में, बल्कि मुमकिन है और वाजिब, और इस वाजिब को हम खुदा कहते हैं। जब वाजिब साबित हो जाता है फिर खुदाशनासी का मरहला आता है। पर इसका मतलब है कि खुदाशनासी इसको क्या है, अपना मौजू इस बात करने के लिए जरूरत है किसकी, फलसफा उला की। या मसलन अगर आप खुदाशनासी की बहस में जा रहे हैं, मतलब बयान करना चाहते हैं, आप साइंस से इस्तेफादा करें, यानी बात चीजें साइंस से लेकर खुदाशनासी की बहसों को हल करें जाकर। तो कहते हैं उलूम फलसफे में, उलूम फलसफी में मुमकिन है कि ऐसे उसूल हों कि जो नजरी हों और दूसरे उलूम से लिए गए हों अपने मसाइल को इस बात करने के लिए, लेकिन फलसफा उला का यह मकाम नहीं है। फलसफा उला उसूल मौजूआ का मोहताज नहीं है। बात वाज़े हुई है या नहीं हुई है? बस यहां तक यह मतलब हमारे लिए वाज़े हो गया कि मबादी तस्दीकी का जो मबादी तस्दीकी की जो पहली किस्म है कि जिनको उसूल मौजूआ कहा गया है, फलसफा इसका मोहताज नहीं है, और फलसफे से मुराद हमारी फलसफा उला है। यानी फलसफे के अंदर ऐसे उसूल व कवानीन नहीं हैं कि जो इस बात के मोहताज हों। दस्ते दुवम अज उसूल,
फलसफा से पहले इख्तियार की जरूरत है, खुद फलसफा के अंदर तो ये इस बात किए जाते हैं। या नहीं?
हाँ, फलसफा में जो साबित कर रहे होते हैं ना, तो वो दूसरों के उसूले मौजूआ होते हैं, वो खुद उसके फलसफे के अपने मसाइल हैं। वो
बदी है वो खुद,
कौन?
समझ गया अपने।
फलसफा जिन कवानीन का सहारा लेकर अपने मसाइल को हल करता है, वो कवानीन नजरी नहीं है, बदी ही हैं, अभी हम बयान करने लगे हैं। ऊपर हमने क्या बात साबित कर दी कि जिन कवानीन और उसूल का सहारा फलसफा उला लेता है वो नजरी नहीं है। पास पहली किस्म की तो कोई जगह बचती नहीं है फलसफा उला की,
यानी उनको इस बात की जरूरत नहीं है।
उनको इस बात की जरूरत नहीं है। अभी हम ये पढ़ने लगे हैं। ऊपर हमने अभी ये बताया है कि फलसफे के जो कवानीन है जिनके तहत वो अपने मसाइल को इस बात करता है, फलसफे में कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो नजरी हो, ताकि उसको हम किसी और इल्म में जाकर इस बात करें और फलसफा उससे इस्तेफादा करके आके क्या करे, यहां अपने मसाइल हल करे, इस तरह की सूरत हाल ही नहीं है। बस दूसरी किस्म बन जाती है क्या कि दस्ता दोवम अज उसूल, यानी मबादी तस्दीकिया के, जिसको हमने नाम दिया है उसूल का, और वो उसूल कौन से हैं? कजाया बदीही व बीनियाज अज इस बात व तबीन अज। दूसरे ये हैं कि इनको तबीन और इस बात की जरूरत नहीं है। मानंद कजिया मुहाल बूदन तनाकुज, फलसफा जिस कानून से इस्तेफादा करता है वो है तनाकुज का मुहाल होना। वजूद और अदम एक जगह पर जमा नहीं हो सकते, ये तनाकुज मुहाल है। इस कानून का सहारा लेकर वो अपने मसाइल को इस बात करता है, और ये क्या है? बदीही तरीन कजिए में से है, बदीही तरीन उसूल में से है, इसको तो इस बात की जरूरत नहीं है। व मसाइल फलसफे उला फकत नियाज बेचनीन उसूली दारंद, यानी फलसफे उला को अगर उसूल की जरूरत है अपने मसाइल को इस बात करने के लिए, तो वो इस किस्म के उसूल है, यानी जिनको इस बात की जरूरत नहीं है बल्कि बदी ही हैं वो। वली इन उसूल एहतियाजी बे इस बात न दारंद, तादर इल्म दीगरी इस बात शमंद, ताकि उनको दूसरे इल्म में जाकर हम इस बात करें और वो मबादी तस्दीकिया बने फलसफा उला के लिए। पस बिनाबरी पस फलसफा नुखुस्तीन, यानी फलसफा उला यानी मेटाफिजिक, एहतियाजी बेहीच इल्मी ना दारद, फलसफा किसी इल्म का मोहताज नहीं है, ना ही इल्म अकली का, और ना ही इल्म तजर्बी व साइंसी का, और ना ही इल्म नकली, मसलन तारीख का या हदीस का या किसी का भी जरूरत, ना उलूम नकली का भी मोहताज नहीं है। क्योंकि एहतियात तब तब होती कि उसको ऐसे कानून की जरूरत होती जो उसके मसाइल को हल करने में मदद देते, और इस किस्म के उसूल का वो सहारा ही नहीं लेता, वो तो बदी तरीन उसूल का सहारा लेता है, बस किसी भी इल्म का मोहताज नहीं है। और ये क्या है? फलसफा उला की अहम तरीन खसूसियत है, और इसी इल्म इसी खसूसियत को मद्देनजर रखते हुए फलसफा उला को क्या कहा गया? उम्मुल उलूम, तमाम उलूम की माँ है ये, यानी माँ से मुराद क्या है? तमाम उलूम का मरजे ये है, मोहताज हैं तमाम उलूम इस इल्म के, लेकिन खुद किसी का मोहताज नहीं है। हाँ, कहते हैं कि एक मतलब जेहन में रखें कि फलसफा जब बहस करता है तो उसको इल्म मंतिक के कवानीन का सहारा लेना पड़ता है। फलसफे को एपिस्टेमोलॉजी में होने वाली जो बहसें हैं उनका सहारा लेना पड़ता है, मार्फत शनासी की बहसों का। तो अब अगला बंदा फौरन सवाल कर देगा, इसका मतलब यह है कि आपने ऊपर कहा कि फलसफा किसी इल्म का मोहताज नहीं है, तो अब यहां पर आके आप कह रहे हैं कि फलसफा कम अज कम दो इल्मों का मोहताज है, कि इल्म मंतिक अपने कवानीन बयान करेगा तो फलसफा इस्तेदलाल करेगा अपने मसाइल को इस बात करने के लिए। मारिफत शनासी जो है वो अक्ल व तजर्बा व हिस इन सब की अक्ल के बारे में बहस करेगा इल्म मारिफत शनासी, तो उस वक्त फलसफा रविश अकली के जरिए अपने मसाइल को साबित करेगा, तो दो इल्म की तरफ एहतियात तो साबित हो गई है, तो कैसे इस मतलब को जम करे? तो आयतुल्लाह इस बात फौरन फरमाते हैं कि इल्म मंतिक और मारिफत शनासी में जो मसाइल बयान होते हैं वो भी बदी ही हैं, और उनको जो तफसील से बयान करने की जरूरत पेश आई है उसकी वजह यह है कि उससे गफलत बरती गई है। और इल्म मंतिक के जरिए उस गफलत से पर्दा उठाया जाता है। मसलन आप जब इस्तिदलाल करते हैं तो इस्तिदलाल में क्या करते हैं, कियास, कियास जो कि बुरहान मंतिक की जबान में कियास, वाइला उर्फी और फिकही जबान में कियास मुराद नहीं है, कियास जो है उसकी शक्ल अव्वल के मुताबिक आप क्या करते हैं, इस्तिदलाल करते हैं। तो मंतिकदान मुत्तफिकुल कौल है कि कियास की शक्ल अव्वल जो है वो बदीहीयुल इंताज है, अपना नतीजा देने में बदीही है। मंतिक मुजफ्फर में आपने तफसील से इस बहस को पढ़ा है या पढ़ेंगे जाके, कि अभी खोलने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने मंतिक नहीं पढ़ी है जो दर्स सुन रहे हैं, तो वो जब मंतिक पढ़ेंगे तो ये मतलब उनके लिए वाजे होगा, यहां खोल नहीं सकता चूंकि मतलब हमारा जो है वो फिर रह जाएगा। बस फरमाते हैं कि इल्मी मंतिक के अंदर भी जो मसाइल बयान हो रहे हैं बदीही हैं, मारिफत शनासी भी जो जिन मसाइल को बयान कर रही है, तबयीन कर रही है, वो भी बदीही हैं। फकत क्या है, गफलत होने की वजह से ये अलग अलग इल्म में इनको तफसील से बयान किया जा रहा है ताकि इंसान जो है वो तवज्जो करे इसकी तरफ, जैसे उसकी तवज्जो होती है वो उसका मान, उसको मान लेता है, उसका इनकार नहीं करता। बस इस एतबार से इल्म मंतिक और मारिफत शनासी भी फलसफे पर मुकदम नहीं है, या फलसफा इनका मोहताज नहीं है, इस माना में कि ये मबादी तस्दीकिया फराहम करें फलसफे को, ऐसा नहीं है। बात वाज़े? तो कहते हैं कि इसकी तफसील जो है, जो अभी हमने बयान की है, दर्स नंबर 11 में जाकर मजीद इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो ये था इस मतलब का बयान कि मबादी फलसफा की क्या हैसियत है। तो नतीजा यह निकला कि मबादी फलसफा, अगर मबादी तसव्वुरी मुराद लें तो असल मौजू तो बदीही है, मसाइल के जो मौजूआत हैं वो उसी इल्म, उसी मसले के ज़िमन में उसकी तारीफ कर दी जाती है। मबादी तस्दीकिया मद्देनजर रखें तो वजूद मौजू के वजूद के इस बात का जो मरहला है वो तो जरूरत नहीं है, चूंकि वजूद है ही खुद बदीही, उसको इस बात की जरूरत नहीं है। अगला मरहला जो है मबादी तस्दीकी का, यानी ऐसे उसूल और कवानीन, वो मबादी तस्दीकी या आया फलसफे को जरूरत है, कहते हैं जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फलसफा उन उसूल और कवानीन का सहारा लेकर अपने मसाइल हल करता है जो बदीही हैं, और जब बदीही हैं तो अलग इल्म में होने की जरूरत नहीं है। बस फलसफा किसी इल्म का मोहताज नहीं है। इसके बाद जो है अगली बहस करते हैं हदफ फलसफा, कि चाह रहा था कि इसको भी आज बयान कर देते लेकिन रह गया, इंशाल्लाह ये कल फिर बयान करते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।